सॉल्ट लेक सिटी में टेंपल स्क्वायर सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजे का 184th अर्धवार्षिक महासम्मेलन है। इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे और इस अधिवेशन के लिए संगीत की प्रस्तुति गायक मंडली में शामिल ग्रेट्सविल, सेंसबरी पार्क और ट्यूवेल यूटा क्षेत्रों में रहने वाले सदस्य द्वारा पेश की जाएगी। इसका प्रसारण बॉर्डविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम का नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। अध्यक्ष डीटर एफ उडोर्फ गिरजे के प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस सत्र का संचालन करेंगे।
भाई और बहनों, हम आपका अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर के जनरल सम्मेलन के 184वें अर्थवार्षिक के दूसरे अधिवेशन में स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन के संचालन करता है, ने मुझे इस अधिवेशन का संचालन करने को कहा है। हम आप सभी का संसार भर में गर्मजोशी से, जो यहाँ पर या यह आचरण में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और जो संसार भर में विभिन्न स्टेट केंद्रों में सैटेलाइट ट्रांसमिशन द्वारा जहाँ पर सम्मेलन पहुँचा जा रहा है में भाग ले रहे हैं, का अभिनंदन करता हूँ। हम जनरल अधिकारी और जनरल सहकारी अध्यक्षता का, जो इस उपस्थिति है, का कृतज्ञ से अभिनंदन। इस अधिवेशन के लिए संगीत की प्रस्तुति गायन मंडली में शामिल गेट्सविल, स्टेनबरी पार्क और ट्यूवेल यूटा में रहने वाले सदस्यों द्वारा पेश की जाएगी लिंडा मार्गेट ऑर्गन पर होली बेवन के निर्देशन के अंतर्गत। गायन मंडली इस अधिवेशन का आरंभ अराइज ओ गॉड एंड शाइन गाकर करेगी और प्रारंभिक प्रार्थना एल्डर कॉरल विल्फर्ड डब्ल्यू एंडरसन 70 के पहले परिषद के द्वारा दी जाएगी। फिर अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग प्रथम अध्यक्षता में पहले सलाहकार गिरजा के क्षेत्रीय सत्र के लिए समर्थन करने के वोट प्रस्तुत करेंगे।
हमारे स्वर्गीय पिता, जब हम लोग कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हैं, हम सर अपने सर को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं, अपने घरों को धन्यवाद करते हैं। हम आपको जितने भी आपने ब्लेसिंग दिए उसके लिए हम आपका आभारी हैं, और आपके पापों के लिए जो मुक्ति मिली उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पुनर्स्थापित करने के लिए गॉस्पल का, और हम भविष्यवक्त के लिए धन्यवाद करते हैं थॉमस स्मॉनसन के लिए। हम उनसे प्यार करते हैं और हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उनको जो पवित्र काम दिया है। और जितने भी लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं उनके दिल और दिमाग में जो तकलीफें हैं, होली पवित्र आत्मा द्वारा उनको जवाब मिल सके और उनको जवाब मिल सके, ताकि उनको उनकी आत्मा से उनको खुशी मिल सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
It is proposed that we sustain Thomas Spencer
Monson. यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉनसन को भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रखरकर्ता और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के अध्यक्ष रूप में हेनरी बैनरिंग आयरिंग को प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार के रूप में और डीटर फ्रेडरिश उगड्रॉफ को प्रथम अध्यक्षता के द्वितीय सलाहकार के रूप में समर्थन करते हैं। जो पक्ष में है इसे प्रकट कर सकते हैं, जो विरोध करते हैं यदि कोई हो इसे प्रकट कर सकते हैं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि बॉयड केनेथ पैकर को 12 पुरोहितों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में और बॉयड केनेथ पैकर, एल टॉम पेरी, एसएम नेल्सन, डैलन एच ओक्स, एम रसल बैलर्ड, जी स्कॉट, रॉबर्ट डी हिल्स, जेनफ्री आर हॉलैंड, डेविड ए बेडनर, क्विंटन एल कुक, डी थॉट क्रिस्टोफरसन और नील एल एंडरसन का परिषद के सदस्य के रूप में समर्थन करें। जो पक्ष में प्रकट करें, कोई विरोध में तो व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम प्रथम अध्यक्षता के में सलाहकारों और 12 प्रेरितों को भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रखरता में के रूप में समर्थन करते हैं। वैसा पक्ष में कृपया प्रकट करें, विरोध यदि कोई है तो इसे प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि निम्नलिखित के क्षेत्रीय स्तर में रूप में प्रभावित सेवा मुक्त करें, एल्डर कार्लोस एच ओम्डो विलियम और वॉकर को जनरल अधिकारी मनोचित किया जाता है, जो इनके शानदार वो सब जो इनके पक्ष में कृपया इसे प्रकट करें।
And Vito Senkins have been released.
Elder Arvik V. Manson और Dido Vito Sekhs of सेवा मुक्त करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम उनके सेवा के लिए इनका आभार व्यक्त करें। वे सब जो पक्ष में कृपया प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम अन्य महापदा अधिकारियों, क्षेत्रीय स्तरों और महासहायक अध्यक्षताओं का समर्थन करें जो वर्तमान में घटित हैं। पक्ष में कृपया प्रकट करें, कोई विरोध में है इसे प्रकट करें। भाइयों और बहनों, आपके समर्थन के लिए और आपके निरंतर विश्वास के लिए और हमारे लिए आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद।
The choir will now favor us with...
गायक मंडली गाएगी, I know that my Redeemer lives. गाने के बाद हम एल्डर डैरिन एच ओक्स और एल्डर नील एल एंडरसन 12 पीड़ित के परिषद को अध्यक्ष को सुनेंगे। उसके बाद भाई टेड और कैलिस्टर, जो कि रविवार विद्यालय के जनरल अध्यक्ष के रूप में सेवा करते हैं।
In the concluding days of his mortal ministry, Jesus gave his
disciples जिसे उसने नई आज्ञा कहा था तीन बार दोहराई गई है आज्ञा सरल किंतु कठिन थी जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो एक दूसरे से प्रेम रखने की शिक्षा उद्धारकर्ता की सेविकाई में बहुत महत्वपूर्ण रही थी दूसरी महान आज्ञा थी तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो यीशु ने यह भी सिखाया था अपने शत्रुओं से प्रेम रखो लेकिन दूसरों से ऐसा प्रेम रखना जैसा उसने अपने लोगों से किया था उसके शिष्य और हमारे लिए एक विशिष्ट चुनौती है असल में अध्यक्ष मॉनसन ने हमें पिछले अप्रैल में सिखाया था प्रेम सुसमाचार का मुख्य सार है और यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है उसका जीवन प्रेम की विरासत थी क्यों एक दूसरे के लिए मसीह के समान प्रेम रखना इतना कठिन है यह इसलिए कठिन है क्योंकि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमारे धर्म और मूल्य और अनुबंधों के कर्तव्यों में सहभागी नहीं होते हैं अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व अपनी महान मध्यस्थता प्रार्थना में यीशु ने अपने अनुयायियों के लिए प्रार्थना की थी मैंने आपका वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं तब उन्होंने पिता से याचना की थी मैं यह विनती नहीं करता कि आप उन्हें संसार से उठा ले परंतु यह कि आप उन्हें उस बुराई से बचाए रखें हमें संसार में रहना है लेकिन संसार जैसा नहीं बनना है हमें संसार में अवश्य रहना चाहिए क्योंकि जैसे यीशु ने एक दृष्टांत में सिखाया था उसका राज्य खमीर के समान है जिसका उद्देश्य अपने प्रभाव से सबों को ऊपर उठाना है उसके अनुयायी यह प्रभाव नहीं डाल सकते यदि वे केवल उन साथ संबंध रखें जो उनके धर्मों और प्रार्थनाओं को मानते हैं लेकिन उद्धारकर्ता ने यह भी सिखाया था यदि हम उससे प्रेम रखते हैं जो हम उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे अलग अलग धर्मों और प्रार्थना प्रथाओं के लोगों के बीच रहते हुए आज्ञाओं का पालन करने के बारे में सुसमाचार में बहुत शिक्षा है मतभेद के बारे में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जब पुनर्जीवित मसीह ने देखा निफाई 32 में की रीति के विषय में बहस कर रहे थे उसने इस रीति के विषय में स्पष्ट निर्देशन दिए था तब उसने यह महान नियम सिखाया था तुम्हारे बीच कोई मतभेद नहीं होगा जैसा कि अब तक होता रहा है ना ही मेरे सिद्धांत की बातों से संबंधित तुम्हारे बीच कोई मतभेद होगा जैसा कि अब तक होता रहा है क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं जिसके पास मतभेद की आत्मा है वह मेरा नहीं है परंतु शैतान का है जो कि सारे मतभेदों का पिता है और वह लोगों के हृदयों को क्रोध में एक दूसरे के मतभेद करने के लिए भड़काता है देखो एक दूसरे के विरुद्ध क्रोध में लोगों के हृदय को भड़काना मेरा सिद्धांत नहीं है परंतु मेरा सिद्धांत इस प्रकार की बातों को दूर करना है उद्धारकर्ता ने अपनी चेतावनी को मतभेद रखने वालों तक की सीमित नहीं रखा जो 32वें के बारे में आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे उसने किसी के द्वारा भी मतभेद रखने के लिए मना किया था वह भी जो आज्ञाओं का पालन करते थे मतभेद करके लोगों के हृदय को गुस्से से उत्तेजित न करें शैतान मतभेद का जन्मदाता है उद्धारकर्ता शांति का राजकुमार है इसी प्रकार बाइबल सिखाती है कि बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं आरंभिक पितरों ने सिखाया था कि हमें उन बातों का पालन करना चाहिए जो मेल मिलाप कराती हैं और सच्चाई में प्रेम से बोले क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है वर्तमान प्रकटीकरण में प्रभु ने आज्ञा दी थी कि पुनर्स्थापित सुसमाचार की घोषणा प्रत्येक मनुष्य को अपने पड़ोसी से कोमलता और विनम्रता से करनी चाहिए बहुत ही दीनता से बुराई करने वालों के विरुद्ध बुराई करके नहीं जब हम दीन होते होने और मतभेद से दूर होने का प्रयत्न करते हैं हमें उन सच्चाइयों के प्रति अपनी वचनबद्धता से समझौता या उन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए जिन्हें हम जानते हैं हमें अपने स्तर या मूल्यों को नहीं गिराना चाहिए यीशु मसीह का सुसमाचार और जो अनुबंध हमने बनाए हैं वे हमें सत्य और असत्य के बीच अनंत युद्ध में एक योद्धा की भूमिका प्रदान करते हैं। इस युद्ध में कोई बीच भी की अवस्था नहीं है। उद्धारकर्ता ने मार्ग दिखाया था जब उनके विरोधियों ने उनके सामने एक स्त्री को लेकर लाए जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। जब अपने समय के पापों से शर्मिंदा होकर दोष लगाने वाले चले गए और यीशु को उस स्त्री के साथ अकेला छोड़ दिया गया, उसने दया दिखाते हुए उस समय उस पर दोष लगाने से मना कर दिया, लेकिन उससे दृढ़ता से उसे निर्देश दिया फिर पाप ना करना। प्रेम भरी दया की जरूरत होती है, लेकिन मसीह के अनुयायी स्वामी के समान सच्चाई में मजबूत रहेंगे। उद्धारकर्ता के समान उसके अनुयायी कभी कभी पापपूर्ण व्यवहार का समान सामना करते हैं, और आजकल कभी कभी इन्हें कट्टर या सनकी कहा जाता है। जब वे अपनी समझ के अनुसार सही और गलत की घोषणा करते हैं, बहुत से सांसारिक मूल्य और प्रथाएं अंतिम दिनों के संतों के लिए इसी प्रकार चुनौतियों उत्पन्न करती हैं। आज इनमें से बहुत एक प्रमुख विचारधारा है संयुक्त राज्य अमेरिका और संसार के बहुत से देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देना। हम ऐसा लोगों के बीच में रहते हैं जो विवाह करने में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते, कुछ बच्चे पैदा करने में विश्वास नहीं करते, कुछ अश्लील चित्रों या घातक मादक पदार्थों पर पाबंदी लगाने के विरुद्ध हैं। अन्य उदाहरण, बहुत से विश्वासी जानते हैं गैर विश्वासी पत्नी या पति या परिवार के सदस्य के साथ रहना या गैर विश्वासी सहकर्मियों या अन्य के साथ संबंध रखना। प्रभु के समर्पित स्थानों जैसे मंदिरों, आराधनालयों और हमारे स्वयं के घरों में हमें सच्चाई और आज्ञा को स्पष्ट और पूर्ण रूप से सिखाना चाहिए, जैसा हम उन्हें उद्धार के योजना से जानते हैं जो पुनर्स्थापित सुसमाचार में प्रकट की गई है। ऐसा करने के अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य देशों में बोलने की और धर्म की स्वतंत्रता संवैधानिक गारंटी द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ साथ गोपनीयता का सम्मान उन देशों में भी किया जाता है जहाँ औपचारिक संवैधानिक गारंटी नहीं है। सार्वजनिक रूप में जो धर्मी लोग रहते हैं और करते हैं उसमें दूसरों के विचार शामिल होते हैं। धर्म का स्वतंत्र होना पालन करने में बहुत से सार्वजनिक कार्यकलाप शामिल होते हैं, लेकिन ये दूसरों के धर्मों और प्रार्थनाओं को समायोजित करने के लिए आवश्यक योग्यता के अधीन होता है। कानून ऐसा व्यवहार को निषेध करता है जो सामान्य रूप से गलत या अस्वीकार्य है, जैसे यौन शोषण और हिंसा या अन्य आतंकवादी गतिविधि, बेशक उग्रवादियों द्वारा ऐसा धर्म के नाम पर किया जाता। कम दुखदायी व्यवहार बेशक कुछ धर्मियों को स्वीकार न हो को सहन करना पड़ता यदि इसे लोगों के मताधिकार द्वारा वैध ठहराया जाता, जैसा मार्मन की पुस्तक में भविष्यवक्ता ने कहा था। सार्वजनिक विषय पर बोलते हुए हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखने और मतभेद से बचने की सुसमाचार शिक्षाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मसीह के अनुयायी और शिष्टाचार का उदाहरण बनना चाहिए। हमें सब लोगों से प्रेम करना, अच्छा सुनने वाला और उनकी धर्म निष्ठा का आदर करना चाहिए। यद्यपि हम असहमत हों फिर भी हमें विवाद नहीं करना चाहिए। विवादग्रस्त विषयों पर हमारे दृष्टिकोण और विचार मतभेद पैदा करने वाले नहीं होने चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण को समझाने और अनुकरण करने और दूसरों को प्रभावित करने में समझदार होना चाहिए। ऐसा करते हुए हम निवेदन करते हैं कि दूसरों को हमारे निष्ठापूर्ण विश्वास और स्वतंत्रता से धर्म का पालन किए जाने के द्वारा अपमानित नहीं होना चाहिए। हम सभी को उद्धारकर्ता के महत्वपूर्ण आज्ञा का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जब लोकप्रिय नीतियां और विचारधारा हमारे दृष्टिकोणों के विरुद्ध हो तो हमें नकारात्मक परिणामों को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और अपने प्रतिद्वंदियों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए। किसी भी सूरत में हमें सभी के प्रति अच्छी भावना रखने वाला होना चाहिए। जाति, नस्ल, धार्मिक विश्वास या अविश्वास और यौन मतभेद पर आधारित अत्याचार सहित किसी प्रकार के अत्याचार को अस्वीकार करना। मैं सामान्य नियमों के बारे में बोल चुका हूँ, अब मैं उन नियमों के बारे में बता रहा हूँ जो विभिन्न परिस्थितियों में लागू होते हैं, जिनमें उद्धारकर्ता की शिक्षाओं को अधिक विश्वसनीय रूप से पालन किया जाना चाहिए। मैं उन बातों से आरंभ करता हूँ जो हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने खेलकूद के दौरान सीखते हैं। बहुत बार यहाँ यूटा में गैर सदस्य हमारे कुछ सदस्यों द्वारा अपमानित किए जाते हैं और उन्हें अलग समझा जाता है, जो अपने बच्चों को अन्य धर्म के बच्चों के साथ खेलने के लिए मना करते हैं। निश्चित रूप से हम बिना उनसे दूरी बनाए या उनके प्रति अनादर दिखाए जो हमसे अलग है, हम अपने बच्चों को व्यवहार के मूल्य और स्तरों को सिखा सकते हैं। गिरजे के विद्यालय में बहुत से शिक्षक उस व्यवहार से दुखी हैं जो कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ करते हैं, इसमें एलडीएस बच्चे भी शामिल हैं। एक दूसरे से प्रेम रखने की आज्ञा में निश्चित रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों से प्रेम रखना और आदर करना शामिल है, और यह किसी भी जाति, संस्कृति या आर्थिक समूह तक सीमित नहीं है। हम सभी युवाओं को दूसरों को तंग करने, अपमान करने या गलत भाषा बोलने और ऐसा मजाक करने से बचने की चुनौती देते हैं, जिसे जानबूझकर दूसरों को दर्द पहुंचाना, ये सब बातें एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए उद्धारकर्ता की आज्ञा का उल्लंघन है। उद्धारकर्ता ने सिखाया था कि मतभेद शैतान का औजार है। यह निश्चित रूप से आजकल की राजनीति की कुछ भाषा और प्रथाओं के विरुद्ध शिक्षा देता है। ऐसा लोगों और नीतियों के साथ रहना जो कि आपसे मतभेद रखते हैं, राजनीति का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन नीतिगत के मतभेद में व्यक्तिगत आक्रमण नहीं होना चाहिए, जो कि सरकार की प्रक्रिया में बाधा डालता और सहयोगियों को दंडित करता है। हम सभी को घृणित बातचीत से दूर रहना चाहिए और विचारों में मतभेद होने पर शिष्टाचार से पेश आना चाहिए। विवाद दूर करने और मतभेदों का आदर करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे घर और पारिवारिक संबंध है। मतभेद अवश्य ही होते हैं, कुछ छोटे और कुछ बड़े। जहां तक बड़े मतभेदों का संबंध है, मान लो परिवार का एक सदस्य बिना विवाह के किसी के साथ संबंध रखता है, इससे दो महत्वपूर्ण मूल्यों में मतभेद उत्पन्न होता है, परिवार के सदस्य के प्रति हमारे प्रेम और आज्ञाओं के प्रति हमारे वचनबद्धता में। उद्धारकर्ता के उदाहरण का पालन करते हुए हम प्रेम भरी दया दिखा सकते हैं और उन कार्यों का त्याग करते हुए सच्चाई से दृढ़ रहते हैं जो उसे आगे बढ़ाते या लगता अनदेखा करते हैं, जैसा हम जानते हैं किस गलत है। मैं पारिवारिक संबंध के एक अन्य उदाहरण के साथ समाप्त करता हूँ। 10 साल पहले मिडवेस्ट में एक स्टेट कॉन्फ्रेंस में मुझे एक बहन मिली थी, जिसने मुझे बताया कि उसके गैर सदस्य पति उनके साथ 12 साल से गिरजे आ रहे थे, लेकिन कभी गिरजे सदस्य नहीं बने। उसे क्या करना चाहिए, उसने पूछा था। मैंने सलाह दी कि वह सभी कामों को सही तरह से करती रहे और अपने पति के साथ धैर्य रखे और विनम्र बनी रहे। लगभग एक महीने बाद उसने मुझे यह लिखा। मैं सोचती थी कि 12 साल दर्शाते हैं कि मैं कितनी धैर्यवान थी, लेकिन मैं नहीं जानती कि क्या मैं इसके बारे में बहुत विनम्र थी। इसलिए मैंने एक महीने इस पर सचमुच में बहुत परिश्रम किया और मेरे पति का 32वां हो गया। विनम्रता बहुत शक्तिशाली है, विशेषकर एक परिवार में। उसके पत्र में आगे लिखा है, मैं अधिक विनम्र होने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि हम इस साल मंदिर में मोहर बंद होने के लिए कार्य कर रहे हैं। 6 साल बाद उसने मुझे एक अन्य पत्र लिखा। हाल ही में मेरे पति को हमारे वार्ड का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीवन में बहुत से संबंधों और परिस्थितियों में हम उन लोगों के बीच रहते हैं जो हम से मतभेद रखते हैं। जहां जरूरी हो हमारी तरफ से इन मतभेदों को इनकार नहीं करना चाहिए या छोड़ा जाना नहीं चाहिए, लेकिन मसीह के अनुयायी को उनके साथ शांति से रहना चाहिए जो उनके मूल्यों में सहभागी नहीं होते या उन शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करते जिन पर ये आधारित होते हैं। पिता की उद्धार की योजना, जिसे हम भविष्यवक्ता के प्रकटीकरण द्वारा जानते हैं, हमें नाश्वर अवस्था में रखती है जहां हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। इसमें शामिल है भिन्न संस्कृति और धर्म के अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, जैसा उसने हमसे प्रेम रखा था। जैसा मार्मन की पुस्तक के भविष्यवक्ता ने सिखाया था, हमें परमेश्वर से और सभी मनुष्यों से प्रेम करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। चारों तरफ से अशांति के वातावरण में जीने की कठिन समय में हमारे उद्धारकर्ता की आज्ञा, जैसा उसने हमसे प्रेम रखा था, हम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखें। शायद हमारे लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इसे समझें और अपने सभी संबंधों और कामकाज में इसके अनुसार जीने का प्रयास करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17, an angel called Joseph by
name. अपनी पहली भेंट में स्वर्गदूत ने जोसेफ को नाम से पुकारा और उसने कहा था कि वह मरोनी परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, एक संवेदक वाहक था और कि वह परमेश्वर के पास उसके लिए एक कार्य के लिए आया था। कल्पना करें जोसेफ ने क्या सोचा होगा जब स्वर्गदूत ने उसे कहा कि उसका नाम सभी राष्ट्रों, जाति और भाषा में अच्छे और बुरे के लिए किया जाएगा। शायद जोसेफ की आंखों में आश्चर्य को देखकर मरोनी को इसे फिर से बताना पड़ा कि सब लोगों के बीच उसके विषय में बहुत बहुत ही अच्छी और बुरी दोनों बातें बोली जाएंगी। जोसेफ स्मिथ के विषय में बोली अच्छी बोली गई बातें धीरे धीरे आईं, लेकिन बहुत बुरी बातें एकदम शुरू हो गईं। जोसेफ ने लिखा था कि यह बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक अज्ञात लड़के के चरित्र और को आकर्षण का इतना महत्व मिले कि इसके लिए कठोर अत्याचार सहे, जबकि कुछ लोग जोसेफ से बहुत अधिक प्रेम करने, अन्य लोग उसके प्रति अधिक से अधिक दुश्मनी रखने लगे। 38 वर्ष की आयु में 150 लोगों की भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। यद्यपि भविष्यवक्ता का जीवन एक माह समाप्त हो गया, जोसेफ के विषय में अच्छा और बुरा बोलने में आरंभ हो लगा था। क्या हमें उसे विषय में बोली जा रही बुरी बातों पर अशक्त होना चाहिए? प्रोहित पॉल को पागल और दुष्ट कहा गया था। हमारे प्रिय उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र को पेटू पियकड़ और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त का लेबल लगाया गया था। प्रभु ने जोसेफ से उसकी नियमति के विषय में कहा था, पृथ्वी में हर तरफ उसके विषय पूछताछ की जाएगी, मूर्ख उसका मजाक उड़ाएंगे और उसके विरुद्ध बहुत क्रोध बढ़ेगा, जबकि हृदय में पवित्र बुद्धिमान सज्जन और गुणी लोग उसके हाथ से निरंतर सलाह, अधिकार और आशीषों की खोज करेंगे। क्यों प्रभु ने अच्छाई के साथ साथ बुराई किए जाने की अनुमति देता है? परमेश्वर की बातों के खिलाफ विरोध इसलिए किया जाता है ताकि सच्चाई की खोज करने वालों को प्रार्थना के लिए उत्साहित किया जाए। जो स्मिथ प्रस्थापना का भविष्यवक्ता है, उसका आत्मिक कार्य पिता और पुत्र के प्रकट होने से आरंभ हुआ, बाद में अनंगित स्वर्गीय भेंटें हुई। वह पवित्र धर्मशास्त्र खोए सिद्धांत और प्रहोत्तियों की प्रस्थापना करने के लिए परमेश्वर के हाथों का औजार था। जोसेफ के कार्य के महत्व और को समझने के लिए दिमागी ज्ञान से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए हमें जोसेफ के समान परमेश्वर से पूछना चाहिए। आत्मिक प्रश्नों के लिए परमेश्वर से आत्मिक उत्तरों की जरूरत होती है। बहुत से जो पुनर्स्थापना के कार्य में विश्वास नहीं करते, वे मात्र ये विश्वास करते कि स्वर्गीय प्राणी पृथ्वी के लोगों से बात करता है। वे कहते हैं यह असंभव है कि सोने की पट्टियां स्वर्गदूत द्वारा दी गई और परमेश्वर की शक्ति द्वारा अनुवाद की गई। इस अविश्वास के कारण वे जोसेफ की गवाही को एकदम अस्वीकार कर देते हैं और कुछ दुर्भाग्य से भविष्यवक्ता के जीवन को बदनाम करने की गंदी कोशिश करते हैं और उसके चरित्र के विषय में झूठ बोलते हैं। हम विशेषकर दुखी होते हैं जब कोई कभी जोसेफ का आदर करता है, अपनी आस्था से पलटकर भविष्यवक्ता की बुराई करने लगता या लगती है। एल्डर नील मैक्सवेल ने एक बार कहा था, गिरजे के बारे में सीखने के लिए उस लोगों को सुनना चाहिए जिन्होंने गिरजा छोड़ा है। ऐसा है जैसे यीशु को समझने के लिए यहूदा से बातचीत करना। जो लोग गिरजा छोड़कर चले गए, वे उन्हें विश्व अपने विषय में अधिक और गिरजे के विषय में कम बताते हैं। यीशु ने कहा था, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आओ हम उन्हें सहानुभूति रखें जो जोसेफ स्मिथ की आलोचना करते हैं। हम अपने दिलों में जानते हैं कि वह परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता थे और इन सब बातों के बारे में मरोनी द्वारा बहुत पहले बोले वचनों से आश्वस्त है। वास्तविक जानकारी लेने वाले से हम कैसा बर्ताव करें जो कि भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के विषय में सुनी या पढ़ी गई नकारात्मक बातों के लेकर चिंतित हैं? अवश्य ही हम हमेशा ईमानदार और सच्चे प्रश्नों का स्वागत करते हैं। जोसेफ के चरित्र के विषय में प्रश्नों के लिए हम उन हजारों लोगों के संबंध शब्दों को बांट सकते हैं जो जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते थे और जिन्होंने उनके कार्य को स्थापित करने के लिए उनका जीवन दे दिया था। जॉन टेलर जिन पर उस भीड़ ने चार बार गोली चलाई थी जिसने जोसेफ की हत्या की थी, वे ने बाद में कहा, मैं परमेश्वर स्वर्गदूत और मनुष्यों के समक्ष प्रमाण करता हूँ कि जोसेफ एक अच्छा ईमानदार और गुणी पुरुष था, कि उसका निजी और सार्वजनिक चरित्र युद्ध अशुद्ध और वह परमेश्वर के व्यक्ति के समान जिया और मरा था। वास्तविक जानकारी लेने वाले को हम बता सकते हैं कि इंटरनेट में असत्य जानकारी को अलग करने वाला कोई फिल्टर नहीं लगा होता। कुछ जानकारी चाहे कितनी ठोस क्यों ना हो बिल्कुल असत्य होती हैं। सालों पहले मैंने टाइम्स मैगजीन में एक लेख पढ़ा था जिसमें एक पत्र के विषय में लिखा था जिसे शायद मार्टिन हैरिस द्वारा लिखा गया था जो कि मार्मन की पुस्तक की पट्टियों के विषय में जोसेफ स्मिथ के विवरण से मेल नहीं खाता था। गिरजे के कुछ सदस्य इस पत्र को कारण पढ़कर गिरजा छोड़कर चले गए। दुख की बात वे तुरंत छोड़कर चल दिए। महीनों बाद विशेषता को पता चला कि वह पत्र बिल्कुल जाली था। आप जो समाचारों में सुनते हो उसके विषय में समझदारी से प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन आपको परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की गवाही पर कभी भी शक नहीं करने की आवश्यकता है। जानकारी लेने वाले हम बता सकते हैं कि जोसेफ के विषय में कुछ जानकारी इस तरह से प्रस्तुत की जा सकती है जो उसके समय में प्रस्तुत में संबंध में बिल्कुल अलग था। बाद में मुझे एक फोटोग्राफर द्वारा ली गई एक फोटो डार्क में मिली जो उसने टेलीस्कोप लेंस से बहुत दूर से ली थी, जिसमें मैं लॉन आराम में से लेटा हुआ था। उसके नीचे लिखा था नेशनल सेंटर। मैं सलाहकार। फोटो सच्ची थी, जो लिखा वह भी सत्य था, लेकिन इस सच का झूठे प्रचार के लिए उपयोग किया गया। कुछ बातें जो हम जानते हैं कि सच्ची हैं, हम महज इसलिए नहीं ठुकराते क्योंकि यह अभी हमें समझ में नहीं आती हैं। जानकारी लेने वाले को हम बता सकते हैं कि जोसेफ एकमात्र व्यक्ति नहीं था जिसके स्वर्गदूत ने भेंट की थी। मार्मन की पुस्तक गवाही देने वालों ने लिखा था, हम गंभीरता से घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आकाश से नीचे आया, हमने पट्टियां को अपनी आंखों से देखा। इनके अतिरिक्त हम अन्य लोगों के उदाहरण भी दे सकते हैं। वास्तविक जानकारी लेने वाले को पुनर्स्थापित समाचार के प्रचार के को भविष्यता द्वारा प्रभु के काम के परिणाम के रूप में देखना चाहिए। 29,000 से अधिक सभाएं और 88,000 प्रचार संसार भर में सुसमाचार सिखा रहे हैं। लाखों अंतिम दिनों के संत यीशु मसीह का अनुसरण करने, सम्मानजनक जीवन जीने, गरीब की देखरेख करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरों की मदद करने के लिए अपना स्वयं प्रतिभा का योगदान दे रहे हैं। यीशु ने कहा था, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये व्याख्या बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन वास्तविक जानकारी लेने वाले को केवल इन पर भरोसा करके सच्चाई की अपनी खोज को सही पर समाप्त नहीं करना चाहिए। प्रत्येक विश्वास करने वाले को आवश्यकता जोसेफ स्मिथ के दिव्य मर्श और चरित्र की आत्मिक पुष्टिकरण की जरूरत है। यह प्रत्येक पीढ़ी के लिए सच है। आत्मिक प्रश्नों के लिए परमेश्वर से आत्मिक उत्तरों की जरूरत होती है। हाल ही में जब ईस्ट कोस्ट में एक रिटर्न मिशनरी ने मुझे अपने मित्र के बारे में बताया जो भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के बारे में उसे मिली जानकारी में उलझन में था। उन्होंने कई बार बोला था और रिटर्न मिशनरी लगता था इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप स्वयं ही संदेह में करने लगा था। यद्यपि मैं आशा करता था उसे अपने मित्र को मजबूत करना चाहिए, मैं उसकी समय की गवाही के लिए चिंतित था। भाई और बहनों, मैं आपको सावधान करता हूँ, आप दूसरों की अधिक मदद नहीं कर पाएंगे यदि आपका स्वयं का विश्वास मौजूद नहीं है। कुछ सप्ताह पूर्व मैं साउथ अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज में चढ़ा था। फ्लाइट अटेंडेंट ने हमारा ध्यान सुरक्षा वीडियो की ओर किया। यह संभावना नहीं है, हमें चेतावनी दी गई, लेकिन यदि हवाई जहाज में हवा के दबाव में परिवर्तन होता है तो अपनी सीट के ऊपर पैनल खुलने और ऑक्सीजन मास्क निकल पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो मास्क को अपने करीब लाएं और अपने नाक और मुंह के पर लगाएं। इलास्टिक स्ट्रैप अपने सिर पर के पीछे ले जाएं और मास्क को ठीक से फिट करें। यदि आवश्यक हो फिर अन्य चेतावनी। दूसरों की मदद करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका स्वयं का मास्क ठीक से लगा हो। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के विषय में नकारात्मक बातें बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे हम उधारकर्ता के द्वितीय आगमन की ओर आगे बढ़ते हैं। झूठे कथन और छल कपट की बातें कम नहीं होंगी। परिवार के ऐसे सदस्य या मित्र होंगे जिन्हें आपकी सहायता की जरूरत होगी। आपने आत्मिक ऑक्सीजन मास्क को ठीक करने का समय अभी है ताकि आप अपनी मदद कर सकें जो सच्चाई की खोज कर रहे हैं। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की गवाही हम से प्रत्येक को अलग अलग तरीके से मिलती है। यह आपको तब भी मिल सकती है जब आप घुटने के बल झुककर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से पुष्टिकरण करते कहते हैं कि वह एक सच्चे भविष्यवक्ता थे। यह आपको तब भी मिल सकती है जब आप भविष्यवक्ता की प्रथम दिव्यदर्शन के विवरण में पढ़ते हैं। गवाही आपकी आत्मा के ऊपर भी आ सकती है जब आप मार्मन की पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं। यह आपको तब भी मिल सकती है जब आप भविष्यवक्ता के विषय के अपनी स्वयं की गवाही देते हैं या मंदिर में खड़े होते हैं महसूस करते हैं। जोसेफ स्मिथ के द्वारा पवित्र मुरंदी की शक्ति जोसेफ स्मिथ के द्वारा पृथ्वी पर पुनर्स्थापित की गई थी। विश्वास और वास्तविक इच्छा के साथ भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की गवाही मजबूत होती है। बाहर के होने वाले पानी के गुब्बारों की निरंतर बछार समय समय पर आपको भिगो सकती है, लेकिन यह आपको विश्वास की धधकती ज्वाला को बुझाने की जरूरत कभी नहीं कर सकती। आज सुन रहे नौजवानों को मैं एक विशेष चेतावनी देता हूं। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की निजी गवाही प्राप्त करें। आप अपनी आवाज में भविष्यवक्ता के विषय में अच्छी बातें बोलकर मोरनी के भविष्य सूचक और शब्द पूरी करने में मदद करें। इसके लिए दो सुझाव हैं। पहला, मार्मन की पुस्तक में उन आयतों की खोजें जिन्हें आप बिल्कुल सच महसूस करते हैं और मानते हैं। इन्हें अपने परिवार और मित्रों के साथ पार्विक घेरू संध्याएं, सेमिनरी और अपनी युवा और युवताओं की कक्षाओं में या स्वीकार करते हुए बांटें। जो जोसेफ परमेश्वर के हाथों में औजार थे, इसके बाद अनमोल मोती या इस पुस्तक में जो अब 158 भाषाओं में उपलब्ध है, भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की गवाही पढ़ें। यह आपको LDS.org पर भी ऑनलाइन या प्रचारकों के पास मिल सकती है। यह जोसेफ स्मिथ की समय की गवाही है जो आपके साथ सचमुच में बांटी गई। इसे अक्सर पढ़ें। जोसेफ स्मिथ की गवाही को अपनी स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड करने पर विचार करें। इसे निरंतर सुने और अपने मित्रों के साथ बांटें। भविष्यवक्ता की गवाही अपनी स्वयं की आवाज में सुनने और से आपको स्वयं की गवाही मिलने में मदद मिलेगी जैसे आप खोज रहे हैं। आगे आने वाले दिन महान और शानदार हैं। भविष्यवक्ता थॉमस मानसर ने कहा है, यह महान कार्य जीवनों को बदलते और आशीष देते हुए आगे बढ़ता जाएगा। संपूर्ण संसार की कोई ताकत परमेश्वर के कार्य को नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। यह महान कार्य आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपको अपनी गवाही देता हूं कि यीशु ही मसीह हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। अपने सुसमाचार की परिपूर्णता की पुनर्स्थापना का मार्गदर्शन करने के लिए अपने एक पुत्र, पवित्र पुरुष, एक धार्मिक पुरुष चुना। उसने जोसेफ स्मिथ को चुना था। मैं प्रमाणित करता हूं कि जोसेफ स्मिथ एक ईमानदार और गुणी पुरुष यीशु मसीह के शिष्य थे। पिता परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह उनको दिखाई दिए थे। उन्होंने मार्मन की पुस्तक का अनुवाद परमेश्वर के उपहार और शक्ति के द्वारा किया था। मृत्यु के पश्चात हम जोसेफ स्मिथ की पवित्र नियुक्ति और दिव्य मिश्र को स्पष्ट रूप से समझेंगे। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब आप और मैं और लोग, लाखों लोग भाई जोसेफ स्मिथ को फिर से समझ पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Ben Carson said of himself,
Ben Carson ने कहा था, मैं अपने पूरे जीवन में पांचवीं कक्षा तक बुरा विद्यार्थी था। एक दिन बेन ने 30 सदस्यों के साथ गणित की परीक्षा दी थी। उसके पीछे बैठे विद्यार्थी ने उन्हें सही करके और उसे लौटा दिया था। शिक्षिका श्रीमती विल्सन ने हर विद्यार्थी को ना शर्मिंदगी से पारे अपने बुदाकर जवाब दिया। श्रीमती विलियमसन सोचने लगी, उन्हें 9 जवाब दिया कि बेन 30 में से 9 लाया है, जो कि सुधरा है। बेन के पीछे बैठे विद्यार्थी ने चिल्लाया, जवाब मेरे नहीं, उसके कुछ नहीं लिखा। उसी वक्त बेन की माँ सोनिया अपने जीवन में बाधाओं का सामना कर रही थी। वह 24 बच्चों में एक थी। उसने अच्छी शिक्षा नहीं पाई थी और पढ़ नहीं सकती थी। 13 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, तलाक भी हुआ और 2 बेटे थे और उन्हें वह डेट्रॉइट के कोट्रस में बड़ा कर रही थी। इसके बावजूद वह बहुत ही खुददार आत्मनिर्भर अटूट विश्वास रखने वाली कि परमेश्वर उसकी बच्चों की सहायता करेगी। यदि बेटों के कारण के जीवन में एक दिन एक मोड़ आया। वह अपने पर में भी उस असफलता के लोगों के साथ में सफाई का काम करती रही। बस लाइब्रेरी थी, वे पढ़ते थे। काम के बाद वह घर लौटी और टेलीविजन में बंद किया, जिससे बेन और उसका भाई देख रहे थे। वह खूबसूरती से बोली, तुम लड़के बहुत टेलीविजन देखते हो, अब से तुम इस हफ्ते 3 कार्यक्रम देख सकोगे। अपने फ्री टाइम में तुम लाइब्रेरी जाओगे, एक हफ्ते में 2 पुस्तकें पढ़ोगे और मुझे रिपोर्ट दोगे। लड़के चकित थे। बहन ने कहा, उसने पूरे जीवन में कभी किताब नहीं पढ़ी थी, सिवाय जब स्कूल में जरूरत के। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने बहस की, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। तब बहन ने आभास किया, उन्होंने नियम बना डाला। मुझे नियम पसंद नहीं है, परंतु उनकी लगन हमें हमारे जीवन को सुधार दिलाने में देखी थी। और वह उससे क्या परिवर्तन आया था। 7वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते वह कक्षा में श्रेष्ठ आ गया था। वह वजीफा पर रियल विश्वविद्यालय में भाग लेने गया। बाद में जॉन हैपकिन मेडिकल स्कूल में, जहां पर 33 उम्र की यह कैसे संभव हो सकता हुआ है। विशाल तौर पर मां के जिसने उसने जीवन के अधिक फायदे से उसके अभिभावक होने के बुलावट को खुशी से निभाया था। अभिभावक की भूमिका पर धर्मशास्त्र के अपने बच्चों को पश्चाताप के सिद्धांत, जीवन, परमेश्वर के पुत्र मसीह पर विश्वास करना, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा पर उपहार लेना कहता है। अभिभावकों के रूप में हम हमारे बच्चों के लिए उत्तम सुसमाचार शिक्षक हैं, न कि बिशप, रविवार, विद्यालय, युवक, पुरुष या युवती। अपने उत्तम सुसमाचार शिक्षक के रूप में हम अपने प्रायश्चित की शिक्षा और वास्तविकता उन्हें सिखा सकते हैं। उनकी पहचान पवित्र नियम नियति और ऐसा करने से उन्हें ठोस नींव दे सकते हैं जो बनेगी। जब सब कुछ कहा और किया जा सकता है, घर यीशु मसीह के सुसमाचार की शिक्षा के लिए आदर्श भवन है। साल भर पहले मैं बेरूत लेबनाने में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था। यद्यपि वहाँ मैंने 12 वर्ष की लड़की सारा के बारे में जाना था, उसके अभिभावक और 2 भाई बहन रोमेनिया की गिरजे में परिवर्तित हुए थे, परंतु उन्हें वापस अपनी जन्मभूमि पर जाने की जरूरत नहीं थी। तब वह सारा 7 साल की थी। वह उनके जन्मभूमि में गिरजा नहीं था, कोई संस्था स्थापित न थी, न रविवार स्कूल या युवती की कार्यक्रम था। 5 साल बाद उसी परिवार ने बेरूत में शाखा के बारे में जाना था और मेरे आने से कुछ पहले उन्होंने 12 वर्ष की सारा बेटी को बड़े भाई बहन के साथ बपतिस्मा लेने भेजा था। यद्यपि वहां मैंने उद्धार की योजना पर आराधना की थी, कुछ आवृत्ति के साथ सारा ने अपना हाथ उठाकर और प्रश्नों का जवाब दिया था। सभा के बाद उसके गिरजा के रूबरू न होने के बारे में जानते हुए मैंने उसे प्रस्तावित किया और पूछा था, सारा तुम इन कैसे प्रश्नों के तो जानती हो। उसने तुरंत जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। उनके पास समाज में उनके लिए गिरजा नहीं था, परंतु उनके पास घर में सुसमाचार था। उसकी माँ उसकी प्रथम शिक्षिका थी। यह इनोस था जिसने कहा था, देखो मैं बेनेले पशुओं को भेजने वन में गया और जो बातें मैं अपने पिता से अनंत जीवन और संतों के विषय में सुना करता था वह मेरे हृदय में अच्छी तरह प्रवेश कर चुकी थी। यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है कि इनोस के प्रथम शिष्य कौन थे। मुझे याद है मेरे पिता ने धर्मशास्त्र का अध्ययन करने और अन्य अच्छी पुस्तकों के पढ़ने के द्वारा बढ़ावा दिया था और उनके द्वारा बढ़ावा पाता जाता था। मुझे याद है अपनी शर्ट की जेब में धर्मशास्त्र और शेक्सपियर के संदर्भों और नए शब्दों जिस भी यह याद रखना सीखना चाहते थे किसान कांड को रखते। मुझे याद है रात्रि भोजन मेज पर सुसमाचार के प्रश्नों पर चर्चा करते थे। मुझे याद है मेरे पिता बड़े बुजुर्गों से भेंट करने ले जाते थे। हमें कैसे रोककर किसी के लिए आइसक्रीम या अन्य दूसरे के लिए रात्रि के भोजन में मुर्गी या उससे हाथ मिलाते हुए पैसे छुपाए करते थे। मुझे याद है मेरी माँ 90 साल की या अधिक उससे सहराज्य किचन में खाना बनाते हुए तब खाने की ट्रे के साथ उपस्थित होती थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो। वह बोली ओह कुछ भोजन बुजुर्गों के लिए ले जा रही हूँ। फिर अपने घर में सोचता हूँ माता बुजुर्ग हैं, मैं अभी भी अपने अभिभावकों के लिए पूरी तरह से आभारी ना हो सका जो मेरे प्रथम सुसमाचार शिक्षक थे। एक अतीत महत्वपूर्ण बात है हम भाई अभिभावकों के रूप में अपने बच्चों को प्रार्थना की शक्ति की शिक्षा देकर कर सकते हैं ना कि सिर्फ प्रार्थना की आदत की। जब मैं 17 साल का होने लगा था तो अपने बिस्तर पर घुटने पर होकर शाम की प्रार्थना कर रहा था। मुझे याद है मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। जब मैं समाप्त कर चुका वह बोली टेड क्या तुम प्रभु ने अपने लिए एक अच्छी पत्नी पाने के लिए मदद मांगी है। उनका प्रश्न ने मुझे पूरी तरह हिला दिया था। यह मेरे मन से दूर की बात है। मैं बास्केटबॉल और स्कूल के विषय में सोच रहा था अतः मैंने जवाब दिया नहीं। जिस पर वह बोली अच्छा तुम्हें चाहिए बेटा यह अति महत्वपूर्ण निर्णय तुम ले पाओगे। उनके शब्द मेरे भीतर हृदय में घर कर गए थे। अगले 6 साल तक मैं अच्छी पत्नी को पाने के लिए परमेश्वर सहायता करने की प्रार्थना करता था और वो कैसे प्रार्थना का उत्तर देता है। अभिभावकों के रूप में हमें अपने बच्चों को अनंत बातों के परिणामों के लिए प्रार्थना करना सिखा सकते हैं। चुनौती भरे संसार में शुद्ध रहने के शक्ति के लिए प्रार्थना करें। आज्ञाकारी होने और सही के लिए खड़े होने रहने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए प्रार्थना करें। कोई शक नहीं है हमारे युवा अपने संध्या में प्रार्थना करते हैं परंतु उनमें से कई सुबह की प्रार्थना करने की आदत से संघर्ष करते हैं। भावकों के रूप में उनके प्रथम सुसमाचार शिक्षक के रूप में और उसे सही कह सकते हैं। कौन से मॉर्मन की पुस्तक है अभिभावकों ने अपने बेटों को बिना हथियारों और कवच पट्टियों के संभावित घातक। परंतु हम में से कितने बच्चों को हर सुबह सबसे अधिक खतरनाक युद्ध के मैदान में भेजते हैं शैतान का सामना करने और अनगिनत लालचों से बिना उनके आत्मिक कवच हथियारों के जो कि प्रार्थना की सुरक्षित शक्ति से आते हैं। तुम प्रभु कहते हैं प्रार्थना में हमेशा लगे रहो कि तुम शैतान पर विजय पा सको। अभिभावकों के रूप में हमारे बच्चों के अंदर सुबह की प्रार्थना की शक्ति की आदत को बनाने में मदद कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को उनके समय का बुद्धिमानता से इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। अक्सर सोनिया कार्सन के साथ हमें अपने पैरों को प्रेम से मजबूती से जमाने की आवश्यकता होती है। अपने बच्चों के लिए टेलीविजन और आधुनिक यंत्रों पर समय से रोक लगाकर कि कई मामलों में उनका जीवन एक अधिकारी हो जाएगा। हमें उसके समय को निर्धारित कर सुसमाचार के लाभ से अति उपयोगित करने की आवश्यकता हो सकती है। वहां पर कुछ आरंभिक बाधा हो सकती है कुछ शिकायतें परंतु सोनिया कार्सन ने समान हमें दर्शन देखने की और उनसे लगे रहने की जरूरत है। एक दिन हमारे बच्चे समझेंगे और सराहना करेंगे जो हमने किया है। यदि हम यह नहीं समझ सकते कौन करेगा। हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चों ने अच्छे आत्मिक बौद्धिक और रचनात्मक फायदे प्राप्त किए हैं या उन्हें हमारे बच्चे हुए समय और हुनर को गुर्जा को बुलाहट या व्यवहारिक पीछे से जो बचता है को हमें देते हैं। आने वाले जीवन में मैं नहीं जानता कि शिक्षक जैसे बिशप या सहायता संस्था अध्यक्ष बच भी पाएंगे परंतु मैं जानता हूँ शिष्य पति पत्नी माता पिता जारी रहेंगे जो संसार के अंत तक। यह एक कारण है कि इसका हमें जिम्मेदारी और आदर करना अति महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर अभिमान होने पर ताकि हम उसके महान तैयारी कर सके परंतु समान्यता से आने वाले जीवन की जिम्मेदारी है। अभिभावकों के रूप में परमेश्वर की सुरक्षा में आगे बढ़ सकते हैं और हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी भी बिना पवित्र सहायता की जिम्मेदारी नहीं देता है इसकी गवाही मैं दे सकता हूँ। हम हमारे पवित्र अभिभावक की भूमिका में है और परमेश्वर के साथ साझेदारी में है। प्रथम समाचार शिक्षक बनकर और अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनकर मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन।
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and join in singing Redeemer of Israel. After the
Redeemer of Israel, choir ke saath sab log khade hoke gayenge.
And Eduardo Gavaret of the 70. Elder Gavaret will deliver his message in his native language of Spanish. English
Elder Gavaret message denge, wo apni bhasha mein denge.
They will be followed by Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum.
Un dono ke baad Jeffrey R. Holland 12 प्रेरितों में से बोलेंगे.
This is the 184th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
184वीं जनरल कॉन्फ्रेंस है यीशु मसीह के अंतिम दिनों का गिरजाघर की.
स्केल में एक से दस तक आप कैसे अपने उसी को परमेश्वर के सामने तोलेंगे? क्या आपके पास व्यक्तिगत साक्षी है कि अंतिम दिनों के संतों के रूप में आप भी अभी की भेंट अनंत जीवन के पर्याप्त के लिए पर्याप्त हैं? आप अपने आप के भीतर भीतर कह सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? आपके मन में क्या ख्याल आएंगे यदि अभी एक मिनट में आपका उद्धारकर्ता के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार हो जाए? क्या आप पश्चातावा और शीघ्र क्रोध आपकी परछाई पर हावी होते हैं, या क्या आप साधारणता से आनंद का अनुभव करते हैं? क्या आप उससे मिलते या उसकी ओर ताकने को टालते हैं? क्या आप दरवाजे के द्वारा ठहर गए हैं या आत्मविश्वास से उत्सुक चल गए हैं? जब विरोधी की अपारपूर्णता को समझ नहीं सकते तब तक प्रयत्न करते समय संत आपका अपने व्यक्तिगत और प्रिय परमेश्वर पर अतिपूर्ण विश्वास है, वह पूरे अभिमान का जितनी संभवता हो दूरी हमारे और परमेश्वर के बीच में बनता रहेगा। विरोधी जानता है कि मसीह में विश्वास का विश्वास के कारण जो करना दया की स्थिरता की लहर को उत्पन्न होती है और यहाँ तक अधिकतम चमत्कार जो व्यक्तिगत भरोसे के साथ हाथ में साथ लिए चलते हैं कि आप सही का चुनाव करने का प्रयत्न करते रहे, इस कारण से वह आपके हृदय को दृढ़ता रहेगा। झूठ कहने को झूठ, उससे स्वर्गीय पिता आपसे नाराज नहीं हो कि प्रयासता हमारी पहुंच से परे हो कि वहां पर कोशिश करना व्यर्थ होगा, कि जबकि आपसे बेहतर है कि आप अयोग्य हैं और कई हजार विभिन्न तरह के वैसे विषय से। जब तक आप ऐसी आवाजों को अपनी आत्मा को छोड़ने की अनुमति देते रहेंगे, आप सच्ची भावना से परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप कुछ भी करें, आप किसी के लिए भी प्रार्थना करें, जो कोई भी चमत्कार की आशा आप करते हो, वहां पर हमेशा से आपकी दुख की शंका आपको आपके विश्वास के दूर ले जाएगी। सिर्फ परमेश्वर पर आपका विश्वास नहीं है, परंतु स्वयं आप भरोसा होना है। इस तरह से सुसमाचार को जीना कोई मजाक नहीं है, ना ही यह बहुत सेहतमंद है। सबसे ऊपर यह पूरी तरह से असंभव है। बदलने का निर्णय आपका है और आप अकेले हैं। मैं 6 वास्तविक सुझाव बांटना पसंद करूंगा कि यदि ध्यान दें, इस बुरी हवाजों को मिटाया जाएगा। आपकी शांति को इस तरह से परिपूर्ण करने का विश्वास है। अंतिम भरोसा जो आप में है, यदि आप अपने इसे कहना चाहते हैं, सिवाय तुलना के आपने अपने आप को 1 से 10 तक दी है। यीशु मसीह के प्रायश्चित द्वारा लागू करने से आप आज ही अपने आत्मिक भरोसे को बढ़कर आरम्भ कर सकते हैं। अगर आप सुनने में एक काम की इच्छा करते हो, मैं निर्दयता से बोल दूंगा, आशा में ऊँचा उठूंगा और बुरा नहीं मानूंगा। अपनी स्वयं की आत्मिक स्वेच्छा की जिम्मेदार लें, दूसरों पर या अपनी जिम्मेदारियों पर दोष ना लगाएं। सफाई देना बंद करें और अपनी पूरी तरह से आपकी ईमानदार ना बनने रहने का प्रयत्न ना करने के लिए बहाने बनाना बंद करें। माने कि आप शारीरिक तौर से आजाद हैं और आजादी और अनंत जीवन को चुनने का आजाद है। संपूर्णता से परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जानता है, परंतु वह यह भी पूरी तरह से जानता है कि आप पूरी तरह से सुसमाचार को जान नहीं चुनते हो। यदि यही कारण है तो काफी है, ईमानदारी से इसे माने और अपनी परिस्थितियों के अंदर रहकर आप स्वयं पूरी कोशिश करें। आत्मिक भरोसा तब तक बढ़ता है जब आप अपने स्वयं के आत्मिक स्वेच्छा के लिए जिम्मेदार लेकर यीशु मसीह के प्रायश्चित को रोज लागू करने के द्वार करते हैं। अपने स्वयं के आत्मिक स्वेच्छा के लिए जिम्मेदार ले, आपकी आत्मा आपके शरीर और आत्मा से बनी है। आत्मा का पोषण करते हैं जबकि शरीर को नजरअंदाज करते हैं, जो कि एक मंदिर है। अधिकतर आत्म विसंगत की ओर लिए चलता है और आत्मनिर्भरता को कम करता है। यदि आप आकृति में नहीं है, अगर आप अपने स्वयं के शरीर से असुविधाजनक है और उसके विषय में कुछ करना चाहते हैं, फिर कीजिए। एल्डर नेल्सन एंड नेल्सन ने सिखाया था कि हमने अपने शरीर को मंदिर की तरह रखना चाहिए, कि हमें अपने भोजन पर नियंत्रण करना और उसके लिए व्यायाम करने का तुरंत करना है। अध्यक्ष बायोट के पेकर ने शिक्षा दी कि हमारे आत्मा और हमारा शरीर की तरह से जुड़ा है, कि हमारा शरीर अपने दिमाग की और उजारों और हमारे चरित्र की नींव डालता है। इसलिए कृपा करके अच्छे से चुने कितना और कैसे खाना है और रोजाना अपने शरीर का व्यायाम करें। इस तरह की जरूरत और योग्यता है। यदि आप शारीरिक तौर से अनुकूल हैं, आज ही निर्णय लें अपने स्वयं के घर का मालिक होने का और रोज लंबे समय का व्यायाम कार्यक्रम शुरू करें। आपकी योग्यता अनुकूल है, स्वादिष्ट भोजन के साथ जुड़े। आत्मिक भरोसा बढ़ता है जब आपकी आत्मा उद्धारकर्ता की सहायता के साथ सच में आप प्राकृतिक पुरुष या पुरुष इसके मालिक हों। स्वेच्छा से आलिंगन पूरे करें, हृदय से आज्ञाकारी होना हमारे जीवन का हिस्सा है। पहचाने कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं बिना इसकी आज्ञाओं से प्रेम किया बिना। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि प्रभु उसके हृदय के इच्छा अनुसार मन की जरूरत है, जो विचार विवेक है और हृदय के उद्देश्य के हैं। जानते हैं आप गिरजा क्यों जाते हैं? आप क्या आप सिर्फ शारीरिक रूप से वहां जाते हैं?
To live a consecrated life in spite of your imperfections. 4. Become really, really good at repenting.
वास्तविक में आए सच में पूरी तरह से पश्चाताप करना और शीघ्र करना अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रायश्चित ही व्यर्थ है। आप इसे उद्धारकर्ता से लागू करना चाहिए। ये कभी भी खत्म नहीं होता है। यीशु मसीह का प्रायश्चित का आलिंगन करें और पश्चाताप जैसे कुछ जिसका स्वागत करें और रोज महान डॉक्टर के आदेशानुसार लागू करें। आगे बढ़े की प्रसन्नता की आदत बढ़ाएं। खुशी से प्रस्ताव करने का के द्वारा आप इसे अपने जीवन का स्तर चुनकर बनाएं। ऐसा करने से लालच के विलंब से सावधान रहें और संसार से अपेक्षा ना करें, वे आपको खुशी देगी। ऐसा आंखें उद्धारकर्ता की ओर लगाएं, अधिक उस पर ध्यान लगाएं कि आप के बारे में क्या सोचता है और परिणाम को आने दें। आत्मिक भरोसा बढ़ता है जब हम स्वेच्छा और खुशी से उसका पालन करते हैं। सच्चे बनो, सच में अच्छे से कार्य करो। मैं प्रभु जिसको चाहूं उसको क्षमा करूंगा, परंतु तुम्हारे लिए सभी को क्षमा करना अवश्य है। हर एक सबको क्षमा करें। ये कम से कम ऐसा करना का साहस करें। अतः अपने स्वयं के जीवन में समाधान करने की अनुमति दे। बैर ना बने, जल्दी बुरा ना माने, क्षमा करें और शीघ्र भूल जाए और कभी ना सोचे कि आप इसका आगे विमुक्त हैं। आत्मिक भरोसा बढ़ता है जब आप जानते हैं कि प्रभु जानता है कि आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। 6. कष्टों को स्वीकार करें। गतिरोध और आश्चर्यक्रम जैसे इसके नश्वर जीवन के अनुभवों के भाग है। स्मरण करें कि आप यहाँ पर साबित करते और परीक्षा देते हैं देखने के लिए कि वो सब कुछ करेंगे जो कुछ प्रभु परमेश्वर आपको करने की आज्ञा दे सकता है। वैसे मैं अभी जोड़ता हूँ, सारी परिस्थितियों के अंतर्गत हजारों आपके भाई और बहन सह रहे हैं, यह कष्ट उठा रहे हैं, तो क्या आप विमुक्त हो पाएंगे? कुछ कष्ट कुछ खुद अपने अविज्ञा या लापरवाही के द्वारा आते हैं, अन्य कष्ट दूसरों की लापरवाही के कारण आते हैं या साधारणता से, क्योंकि यह गिरता हुआ संसार है। जब ये कष्ट आते हैं, विरोधी की कृपा पात्र प्रदर्शित होना आरंभ हो जाता है कि आपने कुछ गलत किया है, कि यह एक सजा है, एक चिन्ह कि स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम नहीं करता। उस पर ध्यान ना दे, बल्कि एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट की कोशिश करें। स्वर की ओर ताकते रहे और कहे, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ ये क्या है। एक समय है अपने आप को साबित करने का, ना उसके साथ आनंद जीवन जीने का। अध्यक्षता में मैंने एक बार अपनी एक विश्वासी बहन से पूछा था कि वह अक्सर अपने आप से क्यों कठोर रहती है, क्यों वह हमेशा अपने आप से छोटी छोटी बातों में से हार जाती है। उसका जवाब यह का उदाहरण था, कोई भी गलत स्वर में आप कोई मुझे नहीं हरा सकता। भाई और बहनों, मेरी सलाह इस प्रचारक बहन के लिए, हमारी सलाह आपके लिए भी है। पहचानिए और अपनी कमजोरियों का सामना करें, परंतु उसके द्वारा अटक ना जाएं, क्योंकि उनमें से कुछ आपके साथी हो जाएं जब तक आप इस पृथ्वी जीवन से चले ना जाएं। कोई भी फर्क नहीं पड़ता इसका स्तर क्या है। स्वमंच आप उसी क्षण ईमानदारी होना चाहिए। आपका सौभाग्य है यदि आप यह जानते हैं कि अपने आप को जानिए। जल्द ही आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें, ना अपनी कमजोरियों को। मैं प्रिय उद्धारकर्ता की गवाही देता हूँ जो चाहता है कि हम आज्ञाओं को जिए। मैं प्रिय उद्धारकर्ता की गवाही देता हूँ जो अपनी महिमा और अनुग्रह हम पर बरसाता है। मैं प्रिय उद्धारकर्ता करता हूँ कि हम प्रायश्चित के शांत और खुशी से लागू करते रहें, जिसे हम यही चाहते हैं। मैं उद्धारकर्ता की गवाही देता हूँ कि परमेश्वर के सामने भरोसे से उद्घत सख्त हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
क्योंकि देखो, अपने वचन को सिखाने के लिए प्रभु उनके राष्ट्र और उनकी भाषा के अनुसार सभी को देता है। आज एक बार फिर इस धर्मशास्त्र की पूर्ति हुई है, जैसे कि मुझे अवसर मिला है कि अपनी भावनाओं को अपनी मातृभाषा में व्यक्त करने का। ये साल 1975 का था जब मैं उर्वेगे प्रेगर मिशन में एक युवा प्रचारक के रूप में सेवा कर रहा था। मेरे मिशन के पहले महीने के दौरान जोन अध्यक्षों ने सुसमाचार के सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए एक क्रिया रखी, जो उनके हर एक प्रचारक को आंखों पर पट्टी बांधी और हमें बोला गया कि हम एक पथ पर चलते हुए सांस्कृतिक हॉल तक पहुंचे। हमें एक विशेष आदर्श की आवाज को सुनना था, एक आवाज जो हमने चलने से पहले सुनी थी, परंतु हमें चेतावनी दी गई थी कि हमारी यात्रा के दौरान हमें कई तरह की आवाजें भ्रमित करेंगी और हमें मार्ग से अलग करने की कोशिश करेंगी। आवाज सुनने के कुछ मिनटों बाद बातचीत और इन सब के बीच एक आवाज ने कहा, मेरा अनुसरण करो। मुझे भरोसा था कि मैं सही आवाज का पालन कर रहा था। जब हम गिरजा के सांस्कृतिक हॉल पहुंचे, हमने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटाई। जब मैंने ऐसा किया, मैंने महसूस किया कि वह दो तरह के समूह थे और मैं एक समूह में था जिसने गलत आवाज का अनुसरण किया था। मैंने अपने आप से कहा कि यह तो बिल्कुल सही जैसा लग रहा था। वह 29 साल पहले के अनुभव का एक पर मुझ गहरा प्रभाव हुआ। मैंने अपने आप से कहा, फिर से कभी भी गलत आवाज को नहीं सुनना। फिर मैंने अपने आप से कहा, हाँ प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा। मैं इस अनुभव को उद्धारकर्ता का हमारी और धर्म निमंत्रण से संबंध करना चाहूंगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जाता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। उसका अनुसरण करने का निमंत्रण सबसे सीधा, साधा और प्रभावशाली निमंत्रण है जो हमें प्राप्त हो सकता है। ये एक साफ आवाज से आता है जो अस्पष्ट नहीं है। प्रभु हमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से आमंत्रित करता है, मेरे पास आओ, मेरा अनुसरण करो, मेरे साथ चलो। हर एक परिस्थिति में यह एक निष्क्रिय निमंत्रण नहीं है, यह एक निमंत्रण है कार्य का। सभी मनुष्य जाति मसीह में विश्वास करने वालों या अविश्वासी, नास्तिक या संशयवादी, शादीशुदा, आप जो कि अभी गिरजा के सदस्य नहीं हैं, यह निमंत्रण प्रचारकों के वचनों की आवाज से प्राप्त करेंगे। क्या आप मार्मन की पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप गिरजा जाएंगे? क्या आप यीशु मसीह का उदाहरण अनुसरण करेंगे और बपतिस्मा लेंगे जिसके पास अधिकार है? आप आज इस निमंत्रण का उत्तर किस तरह से देंगे? मैं आपको निमंत्रण देता हूँ इस संदेश को सुनने का और स्वीकार करने का, यह कहते हुए, हाँ प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा। कार्लोस बार्डियाला और उसका परिवार मिनास के रूप में प्रचारकों से मिल रहे थे, क्योंकि एल्डर विषय के दौरान बहुत से प्रश्न पूछते थे। उन्होंने एक पड़ोसी का आमंत्रित किया, 14 वर्षीय नॉर्मा, जो उनकी उत्तर देने में मदद कर सके। नॉर्मा एक विद्यालय की सक्षम छात्रा थी जो कि उस वर्ष विद्यालय में बाइबल पढ़ रही थी। वह एक स्वर अन्वेषक थी। जब प्रचारक प्रश्न पूछते, नॉर्मा उनकी मदद करती। जब वह घर वापस आई, प्रचारकों द्वारा पाठ के बाद नॉर्मा को पता था कि उसे क्या करना है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज से मेरे लिए दूध वाली कॉफी नहीं, सिर्फ दूध। वह जवाब साफ प्रदर्शन था उसकी इच्छा का, उस निमंत्रण को स्वीकार करने का जो मसीह का अनुसरण करता है, जो कि प्रचारकों द्वारा दिया गया। दोनों कार्लोस बैडियोला और नॉर्मा का बपतिस्मा हुआ। बाद में नॉर्मा का उदाहरण देखते हुए उसकी माता, पिता और बहन भाइयों ने भी बपतिस्मा लिया। नॉर्मा में एक साथ उस छोटी सी मिनास की शाखा में बढ़े। बाद में जब मिशन करके लौटा, हमारी शादी हुई। मैं हमेशा से जानता था कि उसका मेरे साथ होने से मेरे लिए उद्धारकर्ता का अनुसरण करना आसान होगा। अंतिम दिनों के संतों को यह निमंत्रण प्राप्त हो चुका है और वे वादा का नवीन करते हैं, हर हफ्ते प्रभु बोझ को ग्रहण करके। उस वादे का एक भाग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हमें ऐसा करने से आप कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा। निमंत्रण है, मेरा अनुसरण करो। एक धनी युवा शास्त्र को प्रभु का निमंत्रण था। इस युवक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? उसे जवाब में साफ निमंत्रण मिला, मेरा अनुसरण करो। किंतु यह निमंत्रण सादा था, यह बलिदान के बिना न था। इसमें आवश्यकता प्रयास की थी कुछ निर्णय और क्रिया के साथ। भविष्यवक्ता नफी ने निमंत्रण दिया स्व प्रतिबिंब को जब उसने प्रश्न किया और यीशु ने मनुष्य के पुत्रों को कहा मेरा अनुसरण करो। किस तरह से मेरे प्रिय भाई क्या हम यीशु का अनुसरण कर सकते हैं? सहेज हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने को तैयार हों। मेरे पास आओ का निमंत्रण, उसकी आवाज को सुनो और उसका अनुसरण करो, प्रचारकों का संदेश रहा है शुरू से। बहुतों की मदद करना अच्छे के लिए जीवन बदलने की। 50 वर्ष पूर्व प्रचारक मीनास उरुग्वे में मेरे पिता की घड़ी बनाने की दुकान में दाखिल हुए एक घड़ी को ठीक कराने के लिए। जैसे कि अच्छे प्रचारक करते हैं, उन्होंने अवसर का फायदा उठाया मेरे माता पिता से सुसमाचार के विषय में बात करने का। मेरे पिता ने प्रचारकों को अपनाया और मेरी माँ ने संदेश को ग्रहण किया और मसीह का अनुसरण करने के निमंत्रण को। उस दिन से लेकर आज तक वे गिरजे में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा हाँ प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगी। जैसे कि आप उसके पास जाने का प्रयास करते हैं, आपको शक्ति प्राप्त होती है जीवन के बोझ से मुक्त होने की, चाहे शारीरिक या आत्मिक, और बदलने की शक्ति, खुश रहने की और अंदरूनी शांति की। निमंत्रण है, मेरे साथ चलो। इनोक को बुलाया गया सुसमाचार को कठिन कठोर मन के लोगों को पढ़ाने के लिए। उसे लगा कि वह ईश्वर योग्य नहीं है, उसे शक था कि वह घोषणा नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने उसके शक को शांत किया और उसके विश्वास को इस निमंत्रण से मजबूत किया। मेरे साथ चल एक ऐसा निमंत्रण जो कि अंधे मनुष्य की छड़ी या एक मित्र के कंधे जैसा है, वह मार्गदर्शन करते हैं उन कदमों का जो कदम विश्वसनीय नहीं है। उद्धारखंडा के कंधों से या उसके साथ चलने से इनोक ने पाया कि उसके कदम मजबूत हुए और वह एक महान प्रचारक बना। मेरे पास आओ और मेरा अनुसरण करो एक व्यक्तिगत निर्णय है। जब हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, हमारी वचनबद्धता का स्तर बढ़ जाता है और तब तक हम उसके साथ चलते हैं। यह स्तर हमारा उद्धारकर्ता के साथ पास का रिश्ता बनाता है। पहले निमंत्रण को का फल अपनाने में, नॉर्मा और मैंने व्यक्तिगत रूप से इस निमंत्रण को मेरे पास आओ और मेरा अनुसरण करो को स्वीकार किया। फिर एक साथ एक दूसरे के सहायक बन हमने उसके साथ चलना सीखा है। उसे ढूंढने और अनुसरण करने का प्रयास और दृढ़ रहकर हमें वह आशीष प्राप्त होगी जो हम ढूंढते हैं। एक ऐसी स्त्री की स्थिति में जिसने बड़े ही प्रयास से उद्धारकर्ता के कपड़ों को छुआ, और ऐसी स्थिति बार्टिमियस एक अंधा व्यक्ति जिसकी दृढ़ता एक महत्वपूर्ण कारक उस चमत्कार की थी जो उसके जीवन में हुआ। दोनों ही स्थितियों में शरीर और आत्मा की चंगाई हुई। अपना हाथ उस तक पहुंचाओ, उसके कपड़े तक छुओ, उसके निमंत्रण को स्वीकारो, उसके साथ चलो और कहो हाँ प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा। मेरे पास आओ, मेरा अनुसरण करो, मेरे साथ चलो निमंत्रण है जिसमें सह शक्ति सम्मिलित है उनके लिए जो उसको स्वीकार करते हैं जीवन के बदलने के लिए, अपने चारों से तरफ के संसार को बढ़ाने के लिए। एक आपके बाहरी बदलाव की प्रतीक्षीकरण आपकी एक दृढ़ इच्छा होगी कि कमजोर को राहत, लटके हुए हाथों को ऊपर उठाएं और दुर्बल घुटनों को मजबूत करें। हम किस तरह के कदम ले सकते हैं उसके साथ चलने के लिए? इच्छा को पोषित करो मसीह के बेहतर अनुयायी बनने में। प्रार्थना करें, आज ही निर्णय ले कार्य करने का और कहने का कि हाँ प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा। सिर्फ सच को जानना आपकी दुनिया को नहीं बदलेगा जब तक आप अपने ज्ञान को कार्य में नहीं बदलते। अपने निर्णय में दृढ़ रहें जिन सिद्धांतों का प्रशिकरण हम हर रोज आपने किया है। हमारे भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन के शब्द हमें प्रेरित करें, हमारी इच्छा हमारे कार्य में उद्धारकर्ता के निमंत्रण को स्वीकार करें। अध्यक्ष मॉन्सन ने कहा, कौन था ये दुखों से भरा मनुष्य, दुख से परिचित? कौन है महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा? वह हमारा प्रधान है, हमारा उद्धार करता है, वह परमेश्वर का पुत्र है, वह उद्धार का लेखक है। वह कहता है मेरा अनुसरण करो, वह हमें निर्देश देता है जाओ और वैसा ही करो। वह हमसे विनती करता है परमेश्वर की आज्ञा को रखो। हम परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति और संकल्प के स्तर को बढ़ाने का निर्णय लें। और हमारा जवाब उसके निमंत्रण के प्रति ऊंचा और साफ सुनाई दे। हाँ प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।
In what would be the most startling moment of his early ministry?
क्या बड़ा चौंकाने वाला क्षण रहा होगा उसकी प्रारंभिक सेवकाई का? नासरत में उसके घर में मंदिर में यीशु का खड़ा होना। और यशायाह द्वारा भविष्यवाणी किए गए शब्दों को पढ़ना और सुसमाचार की लुका में लेखांकित करना। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटा करे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। उद्धारकर्ता ने उसकी मसीह सेवकाई की पहली सार्वजनिक घोषणा की थी, परंतु यह आयत यह भी है उसकी सेवकाई के आरंभ से यीशु निर्बलों से प्रेम करता और अनोखे तरीकों से प्रतिकूल रहता है। वह उनमें से है, उनमें से दो के घर में जन्मा और उनमें से बहुतों पला बड़ा था। हम उसकी सांसारिक जीवन की सारी विस्तृत जानकारी नहीं है, परंतु उसने एक बार बोला था, लोमड़ियों के भेंट भट्ट को पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर। इतिहास के अंदर से गरीबी को मानवता से तोला गया है, बहुत बड़ी और अति फैली हुई चुनौती रही है। ये प्रत्यक्ष है, अक्सर ये भौतिक परंतु आत्मिक और भावात्मक से होने से इसे नष्ट कर और भी कमजोर कर सकते हैं। किसी भी कारण में महान मुक्तिदाता ने कोई भी आग्रह कर बुलाया नहीं, सिवाय इस बड़े और भारी बोझ को लोगों पर से हल्का करने में, उसके साथ जुड़ने में। यहोवा के रूप में उसने कहा था, वे इज़राइल के घराने का न्याय कठोरता से करेगा, क्योंकि बिगाड़े हुए दिन तुम्हारे घराने में से है। तुम्हारा अर्थ क्या है? वे रोया, तुम मेरी प्रजा को दलते दीन लोगों को पीस डालते हो। नीति वचन का लेखक ने मामले को भेद कर स्पष्ट किया, जो कंगाल और अंधेर करता वह उसकी निंदा करता है, और जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। जरूरतमंदों को देखो और उनके सहायता करो कि वे दुख ना उठाए। इस छेद में आदेश सूचक क्रिया पर ध्यान दे, वे दुख ना उठाए। ऐसी भाषा परमेश्वर प्रयोग करते थे जब वे काम की बात करते थे। संसार में अन्याय को ऐतिहासिक चुनौती की घोषणा करता है, एक पुरुष या स्त्री क्या कर सकते हैं? स्वामी ने स्वयं ही उत्तर दिया था, जब उसके धोखा खाने और क्रूस पर चढ़ने से पहले मरियम ने यीशु के सिर का अभिषेक एक महंगे गाड़े जाने के इत्र से किया था। यहूदा इस्करियोती रियोती ने इस फिजूल खर्ची को विरोध किया और उसके प्रति बड़बड़ाया था। यीशु ने कहा, उसे क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। जो कुछ वे कर सकी उसने किया। क्या ही संक्षिप्त तरीका था। ये पत्रकार ने कलकत्ता का मदर टेरेसा से उस शहर में निस हायो को बचाने के अनेक आशा रहित कार्य के बारे में प्रश्न किया था। उसने ऐसा कहा था, संख्यांकिक तौर पर बोला जाए उन्हें सच में कुछ हासिल ना होगा। उस टिप्पणी पर छोटी महिला ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनका काम प्रेम के विषय में है, ना ही संख्या की। और जो कुछ सामग्री पास में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं परंतु समुद्र में एक बूंद डालते हैं। उन्होंने एक अलग अवसर पर कहा था, परंतु यदि हम नहीं करते हैं तो समुद्र एक बूंद से कम रहेगा, फिर यही होगा। सौभाग्यता से पत्रकार ने संक्षिप्त में कहा कि ईसाई धर्म सच में सांख्यिक कोशिश करना नहीं है। उसका कारण था कि यदि एक पापी जो पश्चाताप करता है स्वर्ग में अधिक आनंद होगा, ना कि 99 जिन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता ना हो। फिर स्पष्टता में से परमेश्वर प्रतिशतों से पहले से धीरे ना होंगे। तो कैसे हम जो हम कर सकते हैं करेंगे? एक बात के लिए हम कर सकते हैं जैसे राजा बेन्यामिन ने सिखाया था, हमारे अर्थ को रोकते हैं क्योंकि हम निर्धन को देखते हैं जो दुर्दशा वे अपने पर लाए हैं। शायद कुछ ने अपनी परेशानियां खुद ही बनाई हैं, परंतु हम बचे हुए भी वैसा ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं? इसलिए करुणा का नियम क्यों पूछता है? क्या हम सब भिखारी नहीं हैं? क्या हम सभी सहायता और आशा और प्रार्थना के उत्तर के लिए नहीं रोते हैं? क्या हम सभी अपनी गलतियों के लिए हमने की है और परेशानियां जिसका कारण हम हैं क्षमा की भीख नहीं मांगते हैं? क्या हम सभी विनय की वो महिमा जो हमारी कमजोरियों के लिए करुणा करेगी वह दया हमारे मामले में कम से कम न्याय विजय होगी? थोड़ा चकित फिर उस राजा बिन्यामिन ने कहा था, हम अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से आग्रह करने के द्वारा प्राप्त करते हैं जिसका करुणा भर जवाब होता है, परंतु दीन जो हम से आग्रह करते हैं करुणा भरे जवाब को देकर अपने पापों की क्षमा द्वारा सुरक्षित कर लेते हैं। अतिरिक्त में उनके आधार पर दया भरा काम करना, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो जरूरतमंद है। जोरमाइटियों को एक समूह द्वारा ध्यान रखा गया, उन साथियों की कलिसिया का जो गंदी और मैली थी, उनके घर प्रार्थना के घरों में बदल गए क्योंकि उनके पहने हुए वस्त्र घटाए थे। मार्मन ने कहा, क्योंकि संसारिक संपत्ति में उनके पास बहुत ही कम था और वे हृदय से भी दीन थे। दो परिस्थितियां जो अधिकतर हमेशा साथ होती हैं, प्रचारक साथी आलमा और अमिलेक ने सामना किया था कि पुराने वस्त्रों के कारण उन्हें नाकार गया को बताते हुए कि कोई भी मौका दूसरे उन्हें नकारते हो वे हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं उनकी भूमि में और उनके घरों में, उनके परिवारों और उनके हृदयों में। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ है और तुमने कुछ प्राप्त नहीं किया और तुम ठोंगी के समान हो जिसने विश्वास को नकारा है। क्या ही चकित तकाजा था कि धनी या दीन, हम जो कुछ कर सकते हैं करें जब दूसरों को जरूरतमंद हो। अभी मैं अव्यवहारिक संसारिक सामाजिक कार्यों का ये जैसे उद्योग की उन्नति के रूप में समर्थन करने का दोषी हूं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरे आदरणीय परिश्रम के लिए नियम मितव्ययिता, आत्मनिर्भरता और महत्वाकांक्षी जैसे दृढ़ जैसे कोई पुरुष या स्त्री जीवित हो है। हम हमेशा से अपनी मदद करना चाहते हैं किसी की मदद लेने से पहले, और आगे मैं पूरी तरह से नहीं जानता आप कैसे अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए जो नहीं करते हैं, जो हमेशा से अपनी स्वयं की सहायता नहीं कर सकते हैं। परंतु मैं जानता हूं कि परमेश्वर जानता है और वह आपकी करुणा कार्य की शिष्यता में मार्ग दिखाएगा यदि आप लगातार रास्ते के लिए चाहते और प्रार्थना करते हैं और आज्ञा का पालन करते रहो वह जो बार बार हमें देता है। आप जानेंगे कि मैं यहाँ पर कठिन सामाजिक जरूरतों के बारे में बोल रहा हूँ जो कि गिरजे के सदस्यों से अच्छे से पारे हैं। सौभाग्यवंश प्रभु का सहायता करने का तरीका हमारे से आसान है। सभी जो शारीरिक तौर से ठीक हैं, उपवास के नियम का पालन करें। यशाया लिखता है, जिस उपवास से मैं प्रश्न होता हूँ वह क्या नहीं, क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ को मारे मारे फिरते हुए और को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, कि तुम भरी बोझ को हल्का करो और उसे मुक्त कर जाने दो। मैं चमत्कार दोनों आत्मिक और संसारिक उनके लिए जो उपवास के नियम को जीते हैं गवाही देता हूँ। मैं चमत्कार की गवाही देता हूँ जो मेरे पास आया था। सच में जैसे यशाया ने लेखा रखा था, मैं उपवास में रोया था और सच में परमेश्वर ने जवाब दिया था, मैं यहाँ हूँ। कम से कम महीने में उस पवित्र मौके को हृदय में बसाए रखें और जैसे परिस्थितियां आपको उपवास भेंट देने और दूसरी ह्यूमैनिटेरियन शिक्षक और प्रचारकों में योगदान देने की अनुमति देती है, उदारता से दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ उदार रहेगा और जो आपके द्वारा आराम पाते हैं आपके नाम को सदा आशीष के लिए पुकारेंगे। 10 लाख की चौथाई से कहीं अधिक गिरजे के सदस्यों ने पिछले साल उपवास भेंट के द्वारा सहायता पाई है समर्पित बिशप और सहायता संस्था अध्यक्षताओं की सेवा द्वारा। ये बहुत से आभारी अंतिम दिन के संत हैं। भाई और बहनों, ऐसा एक संदेश की मांग है कि मैंने अनर्जित अयोग्य मेरे जीवन में कभी ना खत्म होने वाले दोनों संसारिक और आत्मिक आशीषों को मैंने जाना है। आपके समान मुझे भी अक्सर पैसे की चिंता होती है, परंतु मैं कभी भी दीन नहीं रहा हूँ। ना ही मैं जानता हूँ कि दीन कैसा महसूस करते हैं। कहीं अधिक मैं नहीं जानता सारे कारण क्या है कि जिम की परिस्थितियां, सेहत, शिक्षा और आर्थिक मौके या नश्वरता में इतने बड़ा क्यों है। परंतु जब मैं बहुतों के बीच में देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए मैं जाऊँगा। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूँ, मैं भाइयों का भाई हूँ और because I have been given much, I too must give. In that regard, इस आभार में मैं अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन को मेरा व्यक्तिगत श्रद्धांजलि देता हूँ। साल से अब तक इस व्यक्ति के साथ रहकर मैं आशीषित हुआ हूँ और जो छवि मेरे हृदय में है मरते दम तक बनी रहेगी। उनके साथ इस ईस्ट जर्मनी के आर्थिक सर्वनाश से उनके घर की चप्पल में घर जाते हुए, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ अपना दूसरा सूट और अन्य शर्ट दिया परंतु अपने पैरों से जूते भी दे दिए थे। कैसी सुंदर पर्वतों पर उनके पांव पड़े जो कि अच्छी खबर लाए जिससे शांति आई। अध्यक्ष मॉन्सन हमेशा से जो वो करना चाहते हैं करते हैं विधवा और अंधों लके लिए, और यह एक अच्छा सौदा रहा था। 1831 में भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने प्रकटीकरण किया था। प्रभु ने कहा था, दीन एक दिन परमेश्वर का राज्य देखेगा जो उन्हें समर्थ और महान महिमा देगा। क्या हम उस भविष्यवाणी जिसे पूरा करने में मदद कर सकते हैं कि यीशु मसीह का सच्चा गिरजा की महिमा, हमारी सदस्यता और समर्थ हमें गरीबी, जिसने हमें बंदी बना रखा है, जो हम कर सकते हैं करें, और हानि से जो उनसे सारे सपनों को नष्ट करते हैं से मुक्त करें आएगा। मैं यीशु मसीह के दया भरे नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन।
थैंक यू ब्रदर। We are grateful for all who have spoken to us.
हम उन सभी के आभारी हैं जिन्होंने इस दोपहर में हमसे वार्ता की है और मोहक संगीत पेश किया। हम जनरल पौरोहित्य सभा के भाइयों को याद दिलाते हैं जो कि इस संध्या के आरंभ में शाम 6 बजे माउंटेन डेलाइट टाइम्स में होंगे। राष्ट्र भर की मॉमन गायक मंडली का प्रसारण कल सुबह 9:30 से 10 माउंटेन डेलाइट टाइम से होगा। तुरंत बाद रविवार जनरल सम्मेलन अधिवेशन का आरंभ होगा। इस अधिवेशन के हमारे अंतिम वार्ताकार एल्डर एल टॉम पेरी 12 प्रेरितों के परिषद से होंगे। उनके टिप्पणी के पश्चात गायक मंडली इस सभा का समापन अबाइड विद मी जिस इवन टाइड गीत गाने के द्वारा करेगी। फिर समापन प्रार्थना एल्डर एडवर्ड डूबे 70 के द्वारा दी जाएगी।
हमारे जर्नी जीवन की यात्रा में अच्छे और बुरे दोनों समय के होते हैं। प्रत्येक समय में अलग चुनौतियां होती हैं। अब चुनौतियों को किस प्रकार सामना करते हैं यह मूलतः हम पर निर्भर करता है। हमने जीवन की भविष्यवाणी किस पर रखी है? हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के सुसमाचार सुदृढ़ और मजबूत बुनियाद उपलब्ध कराता है। इसका निर्माण थोड़ा थोड़ा करके प्रभु के उसके बच्चों के लिए अनंत योजना का ज्ञान प्राप्त करते हुए होता है। उद्धारकर्ता एक निपुण शिक्षक है, हम उसका अनुसरण करते हैं। धर्मशास्त्र उसको प्रमाणित करते हैं और हम उनका अनुसरण करने के लिए धार्मिकता का एक परिपूर्ण उदाहरण उपलब्ध कराता है। मैंने पिछले महासम्मेलनों में गिरजे के सदस्यों के साथ अपनी माँ की नोटबुक में से कई पाठों को बांटा जो उन्होंने अपनी सहायता संस्था के लिए तैयार किए थे। ये पाठ आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने उस समय थे। उनमें से एक उदाहरण जो चार्ल्स एडवर्ड जेफरसन यीशु मसीह के चित्र पर लिखे थे 1908 में थे, इस प्रकार थे, मसीह होना यीशु मसीह की इतनी सच्चाई और इतने उत्साह से प्रशंसा करना है कि हम उसके समान बनने के लिए संपूर्ण जीवन दे देते हैं। हम उसके बोले वचनों के द्वारा, उसके किए कामों द्वारा और उसकी खामोशी के द्वारा उसकी गवाही प्राप्त करते हैं। हम उसके बारे में जान सकते हैं उसके प्रभावों के द्वारा, जब उसने पहली बार अपने मित्रों और दूसरी बार अपने शत्रुओं पर और तीसरी बार उन लोगों के जीवन में बनाए जो उसके समय में रहते थे। 20वीं शताब्दी के जीवन में एक परिस्थितियों में से एक असंतोष है। लोग कुछ तो पाने इच्छा तो करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है यह क्या इच्छा है। दौलत आ चुकी है, मानव कौशलता के और ज्ञान की उपलब्धि से भरा है, लेकिन हम अभी भी बेचैन हैं, असंतुष्ट हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। यदि हम नया नियम खोलें तो इन वचनों को पढ़ते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, तुम सामर्थ पाओगे, तुम्हें आनंद मिलेगा। मेरी मां को यह विचार पसंद था। मेरी स्त्री पुरुष तक प्रभावित होते हैं जिनके अनुसार वो जीवन का चुनाव करते हैं, जिनको वे उदाहरण रूप में देखते और उनकी नकल करते हैं। यीशु एक महानतम उदाहरण है। स्थायी शांति पाने का एक मार्ग उसी का जीवन है। यीशु के मसीह में हमें क्या अध्ययन करना चाहिए? नए नियम के लेखकों ने यीशु मसीह के कद, उसके कपड़े और जिस घर में वह रहता था के बारे में परवाह नहीं की। वह अस्तबल में पैदा हुआ, बड़ाई का काम किया, 3 साल तक सिखाया और फिर सलीब पर मर गया। नया नियम उन लोगों द्वारा लिखा गया था जिन्होंने निश्चित किया था कि हमारी आंखें इस आश्वासन के साथ उस पर टिकी रही कि वह वास्तव में परमेश्वर का बेटा था और है, संसार का उक्तिदाता, उदितकर्ता, उदारकर्ता के दृष्टांतों में से हम एक हमारे समय में लागू होता है। मत्ती अध्याय 13 में हम इसको पढ़ते हैं। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें निकली तो जंगली दाने दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उन्होंने उसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है? क्या हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करो। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते समय तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों दानों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के शाम समय मैं उनको काट लूंगा। काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर लो और उनको जलाने के लिए एक गट्ठा बांध लो और गेहूं को मेरे खेत खत्ते में डाल दो। पूरी मानव जाति के पुराने शत्रु शैतान को चारों तरफ जंगली दाने बिखेरने के लिए बहुत से उपकरण मिल गए हैं। उसने हमारे घरों की पवित्रता में सेंध लगाने के उपाय खोज लिए हैं। दुष्ट और संसारिक तरीके हमारे चारों तरफ फैल गए हैं और इनसे बुरी तरह से बचना बहुत कठिन हो गया। ये तारों के रास्ते आते हैं, ये हवा के द्वारा उपकरण में आते हैं जो हमें ज्ञान देने और मनोरंजन देने के लिए बनाए गए हैं। गेहूं और जंगली के दाने एक साथ उगते हैं। एक व्यक्ति जो खेत की देखभाल करता है उसे पूर्ण शक्ति से और जो अच्छा है उसका पोषण करना चाहिए और उसको इतना मजबूत और इतना सुंदर बनाना चाहिए कि जंगली दाने के प्रति उसका कोई आकर्षण ना रहे, ना आंखों के लिए ना ही कान के लिए। पूर्वी के गिरजे के रूप में हम बहुत ही आशीषित हैं कि हमारे पास प्रभु और उद्धारकर्ता का समाचार है जिसकी बुनियाद पर हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। मॉर्मन की पुस्तक दूसरे निफाई से हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखो तुम में से फिर कहता हूं कि यदि तुम इस मार्ग से प्रवेश करते हो तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे, तब वह तुम्हें सब बातें दिखाएगी जो तुम्हें करनी चाहिए। हमें संसार के शोर को शांत धीमी वाणी को दबाने और पराजित करने नहीं देना चाहिए। हमें निश्चित रूप से उन घटनाओं के बारे में चेतावनी दी गई जिनका सामना हम अपने समय में करेंगे। हमारी चुनौतियां कि हम अपने आप को उन घटनाओं का सामना करने के लिए कैसे तैयार करते हैं जिनके विषय में प्रभु ने कहा कि अवश्य होंगी। हमारे चिंतित समाज में बहुत से जानते हैं कि अशांत सुसमाचार संसार में परिवार के विघटन से केवल दुख और निराश आती है। इस गिरजे के सदस्य के रूप में हमें परिवार को समाज और अनंत काल की मूल इकाई के रूप में बचाने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। भविष्यवक्ताओं ने हमें पारिवारिक मूल्यों के कमजोर पड़ने, ना टाले जा सकने वाले और विनाशकारी परिणामों के विषय में बार बार चेतावनी दी है। जबकि संसार हमें निरंतर देखता रहता है, हमें निश्चित होना चाहिए कि हमारे उदाहरण उस योजना को थामेंगे और समर्थन करेंगे जिसे प्रभु ने अपने बच्चों के लिए यहां नश्वरता में बनाया है।
सबसे बड़ी धार्मिक शिक्षा उदाहरण द्वारा दी जानी चाहिए। संसार के दबावों को सहने के लिए हमारे घर पवित्र होने चाहिए। याद रखें कि प्रभु की सबसे बड़ी आशीषें धार्मिक परिवारों द्वारा आती और दी जाती हैं। पिता माता के रूप में हमें निरंतर अपनी उपलब्धियों का ध्यानवर्क अवलोकन करना चाहिए। एक बच्चे को सबसे प्रभावशाली शिक्षा अपने चिंतित और धर्मी माता पिता से मिलती है। हम पहले माता की भूमिका का अवलोकन करेंगे। अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली के द्वारा इस उदाहरण को सुने। स्त्रियां जो एक मकान को घर बनाती हैं, समाज में से उनसे बहुत अधिक योगदान देती है। एक बड़ी आर्मी को या एक प्रभावशाली कंपनी का मार्गदर्शन करती है। उसका प्रभाव कौन कीमत लगा सकता है? जो एक माँ अपने बच्चों पर, एक दादी नानी अपनी पीढ़ी पर, और चाचा चाची मामी मामा मम्मी अपने बहनें रिश्तेदारों पर डालती हैं। हम मूर्तियों के प्रभाव को नापना या गिनना शुरू नहीं कर सकते। जो अपने स्वयं के तरीके में सुदृढ़ पारिवारिक जीवन का निर्माण और हमेशा की अच्छाई के लिए भविष्य की पीढ़ियों का पोषण करती हैं, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज की माताओं को अपने घर में मौजूद करने के लिए बहुत अधिक अवसर और गंभीर चुनौतियां हैं। अब हम माता पिता की भूमिका का अवलोकन करते हैं जो हमारे जीवनों में अदा करते हैं। पिता अपने बच्चों को आशीष देते, पवित्र विद्याएं करते, यह उनके जीवन में आत्मिक विशेषताएं बन जाती हैं। पिता वैतिक रूप से पारिवारिक प्रार्थनाओं, प्रतिदिन धर्मशास्त्र अध्ययन, साप्ताहिक पारिवारिक घरेलू संध्या में शामिल होते हैं। पिता पारिवारिक पर्वों का निर्माण करते में शामिल होते हैं। छुट्टियों की यात्रा और शहर की योजना बनाने में मदद करते हैं जिसमें परिवार के सारे सदस्य शामिल होते हैं। इन विशेष अवसरों पर मिलकर बिताई गई यादें बच्चे उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। पिता नियमित रूप से हर बच्चे से अलग अलग भेंट करते और उन्हें सुसमाचार की सीख देते हैं। पिता बेटे और बेटियों का मूल्य सिखाते हैं। वह उनको जीवन में योग्य लक्ष्य स्थापित करने में मदद करते हैं। पिता विश्वसनीय सुसमाचार का उदाहरण स्थापित करते हैं। कृपया याद रखें भाइयों, पिता के रूप में इजरायली आप पे आपकी नियुक्ति समय और अनंत काल में आपकी अत्यधिक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। एक ऐसी नियुक्ति जिसके लिए आप कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। बहुत साल पहले समय स्टेक कॉन्फ्रेंस में जो संदेश हम प्रस्तुत कर रहे थे उसकी विषय वस्तु को दर्शाने के लिए हमने एक फिल्म की क्लिप बनाई दिखाना चाहते थे। एक साल के दौरान जब हम गिरजे के नियुक्त स्टेक सम्मेलन भेंटों की यात्रा की, हमने फिल्म विषय वस्तु से बहुत परिचित हो गए। इन पूरे सालों के दौरान संदेश मेरे मन में कायम रहा था। के बारे में बताया गया था। एक शाम को माँ व्यग्रता से कुछ फलों को बोतलों में डालकर काम कर रही थी। अंततः सब सोने चले गए, सब कुछ शांत हो गया। उसने निर्णय किया कि अब वह फलों को बोतल में डाल सकती है। जब उसने फलों को छिलना और काटना शुरू किया, दो लड़के किचन में आ गए और कहा वे अपनी रात की प्रार्थना के लिए तैयार हैं। काम में विघ्न ना चाहते हुए मां ने तुरंत लड़कों से कहा, क्यों तुम आज रात अपने आप अकेले प्रार्थना कर लो, मां फलों के काम को जारी रखेगी। दोनों में से बड़े ने कहा, मना कर दिया। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, प्रार्थना या फल? कभी कभी हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जब हमारे बच्चे को पाठ सिखाने का मौका होता है जिसका उनके जवान जीवन साथी स्थायी प्रभाव पड़ेगा। अवश्य ही प्रार्थना फलों से अधिक महत्वपूर्ण है, एक सफल माता पिता अपने बच्चों के जीवन में अवसरों का उपयोग करने के लिए कभी भी इतने अधिक व्यस्त नहीं हो सकते कि एक महत्वपूर्ण पाठ नहीं सिखाया जा सके। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे बहुत से सालों में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है जब स्वर्ग में हमारे पिता के बच्चों को विश्वसनीय समर्पित माता पिता के मार्गदर्शन प्रभावों से अधिक जरूरत पड़ी हो। हमारे पास महान और श्रेष्ठ माता पिता की विरासत रही है जो अपने परिवारों का विश्वास और उत्साह से पालन करने के लिए ऐसे स्थान की खोज में सब कुछ त्याग कर देते हैं ताकि अगली पीढ़ी के पास उसने अधिक महान अवसर हो। हम स्वयं अपने भीतर ऐसी दृढ़ निश्चय आत्मा को खोजना चाहिए और चुनौतियों जिनका हमें सामना करते हैं उन पर भी उसी त्याग की आत्मा के साथ विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें भविष्य की पीढ़ी के मन में हमारे प्रभु और उदारकर्ता की शिक्षाओं की मजबूत और आत्मीयता बैठानी चाहिए। और अब मेरे बेटो याद रखो कि मुक्तिदाता की चट्टान पर है जो परमेश्वर का पुत्र मसीह है जिस पर तुम्हें अपनी नींव रखो ताकि जब शैतान अपनी प्रबल हवाओं को फेंकेगा, हाँ बवंडर में बिजली चमकाएगा, हाँ जब उसके सारे ओले बरसेंगे, उसके प्रबल तूफान तुम्हारे थपेड़े मारेंगे, तुम्हारी दुखों की घाटी और अंतहीन श्राप में खींचने के लिए उसके पास बल नहीं होगा, क्योंकि जिस चट्टान पर तुम निर्माण हुआ है वह मजबूत आधार है, एक ऐसा आधार जिस पर यदि मनुष्य का निर्माण हो तो वह गिर नहीं सकते। यह यीशु मसीह का सुसमाचार जो हमें मैं इसकी गवाही देता हूं यीशु मसीह के नाम, आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता स्वर्ग में जो है, हम आपके सम्मुख आते हैं इस सम्मेलन के समापन पर अपने हृदयों में आभार प्रकट करते हुए, जो प्रेरणादायक संदेश हमें आज आपके सेवकों से मिले हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पर सुसमाचार के पुनरुत्थान पे आपको जवाब देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जीवित भविष्यवक्ता के लिए, आपका धन्यवाद देते हैं। भविष्यवक्ता जो कि हमारे समय में है उसके आभार प्रकट करते हुए, हमारे प्यारे भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन के लिए हम आपसे मांगते हैं आप उनको आशीषित करें, उनको अच्छी शक्ति या सामर्थ्य स्वास्थ्य दें, और उनके साथी जो उनके मदद करते हैं उनके साथ भी हो, जब वो जब आपके राज्य के मार्गदर्शन करते हैं। हम आपसे मांगते जो भी संदेश हमने सुने हैं और बहुत से मैसेज जो हमें अभी सुनने वाले हैं आने वाली कार्यवाही की जन महासम्मेलन की कार्रवाइयों में, हमारे विश्वासियों को मजबूत करें यीशु मसीह के नाम में, और हमें प्रेरणा दें कि हमें अच्छे लोग बन सकें, अच्छे माता पिता दादा दादी बच्चे और दादा पाती नाती पोतों के साथ, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
This has been a broadcast of the 100.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजे का 184वां अर्धवार्षिक महासम्मेलन था। इसमें गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों से चुने गए वक्ताओं ने संबोधन किया, और इस अधिवेशन के लिए संगीत प्रस्तुति गायन मंडली में शामिल थे ग्रेट्सविल्स, सेंटबरी पार्क और ट्वेटल यूटा क्षेत्रों में रहने वाले सदस्यों द्वारा दी गई। इस प्रसारण का बोनाविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।